शाम 7 बज रहे थे। कशिश सुबह से घर के कामों में लगी रही थी। आज वो ऊपर नहीं गई थी। सुबह किचन का काम करने के बाद घर गंदा देखकर उसने सफाई करना शुरू कर दिया और जब वो खाली हुई तो नीचे आंगन में बैठ गई। पहले तो वो खाली बैठकर फ़ोन चलाती रही, पर फिर पड़ोस की कुछ औरतें घर आईं तो कौशल्या जी ने उसे उनकी आवभगत और खातिरदारी में लगा दिया। बाहर वालों के सामने कौशल्या और महिमा जी भी उससे बड़े प्यार से बात कर रही थीं। कशिश को औरतों का व्यवहार बड़ा पसंद आया और उन्हें कशिश, बोलने की शौकीन कशिश बड़े ही दिलचस्पी से उनकी बातें सुनती और ज़रूरत पड़ने पर जवाब भी देती रही। दोपहर में वे औरतें गई, कशिश फिर किचन में चली गई। सब बर्तन धोकर वो मुश्किल से हटी ही थी कि बाहर से महिमा जी की आवाज़ आई, बहू शुभ्रा और शुभिका के स्कूल से आने का वक्त हो गया है, उनके लिए मैक्रोनी बना दो। उनकी बात सुनकर कशिश ने आंचल से अपना हाथ पोंछते हुए बाहर आकर कहा, चाची मैक्रोनी कहाँ रखी है बता दीजिए, बना दूंगी। अरे ऊपर वाले छज्जे पर रखी है, लाल ढक्कन वाले डब्बे में। महिमा जी की बात सुनकर कशिश वापस किचन में चली गई। थोड़ा ढूंढने पर उसे डब्बा मिल गया और वो फिर काम में लग गई। कुछ देर बाद शुभ्रा और शुभिका स्कूल से घर आईं। अंदर आते ही उन्होंने बैग आंगन की चौकी पर रखे और खुशबू सूंघते हुए दौड़ते हुए किचन में चले आए। कशिश मैक्रोनी बनाकर उसे कटोरे में निकाल रही थी जब उसके कानों में शुभ्रा की खनकती हुई आवाज़ पड़ी, भाभी क्या बना रही हैं, खुशबू बाहर तक आ रही है। आवाज़ सुनकर कशिश ने पलटकर देखा तो शुभ्रा और शुभिका दोनों दरवाजे पर लटकी हुई थीं। उनमें कशिश को अपनी छवि नजर आई। जब वो उनके बराबर थी तो वो भी स्कूल से छुट्टी होने पर ऐसे ही घर में कदम रखते ही किचन की तरफ दौड़ती थी और बिल्कुल ऐसे ही दरवाजे से लटककर अपनी माँ से खाने का पूछती थी। उन बीते सुनहरे पलों को याद करते हुए कशिश को जानकी जी की याद आ गई। चेहरे पर उदासी के बादल छा गए, जिसे उसने अपनी मुस्कान के पीछे छुपाते हुए जवाब दिया, मैक्रोनी। उसने इतना कहा ही था कि दोनों खुशी से उछल पड़ी, मैक्रोनी, दोनों तेज आवाज में चिल्लाईं और दौड़ते हुए अंदर चली आईं। शुभ्रा ने झट से एक पीस मुंह में डाला और चटकारे लेते हुए बोली, वाह भाभी कमाल कर दिया, मैक्रोनी तो बहुत टेस्टी बनी है। तारीफ सुनकर शुभिका का मन भी मचल उठा। उसने भी झट से मैक्रोनी चखते हुए मुस्कुराकर कहा, सच में बहुत टेस्टी है भाभी, मम्मी से नहीं बनती थी इतनी अच्छी। कशिश दोनों की बात सुनकर और उनका बचपना देखकर मुस्कुरा दी, फिर प्यार से उनके गाल को छूकर बोली, पर चाची तुम्हारे लिए कोशिश तो करती हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है, तो उनके एफर्ट की कद्र किया करो। वैसे भी मुझे उन्होंने ही कहा था कि तुम दोनों के लिए मैक्रोनी बनाने को, क्योंकि वे जानती हैं कि तुम दोनों को मैक्रोनी पसंद है। कितना प्यार करती हैं वे तुम दोनों से और कितना ख्याल रखती हैं तुम दोनों की पसंद नापसंद और ज़रूरतों का। तुम्हें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए, ऐसे बुराई करना गलत बात है। कशिश ने बड़े ही प्यार से उन्हें उनकी गलती का एहसास करवा दिया और वे उसकी बात समझ भी गईं। दोनों ने सर झुकाते हुए एक साथ ही अपनी गलती स्वीकारी, सॉरी भाभी। कोई बात नहीं, बस आगे से ध्यान रखना कि जो आपसे प्यार करे उन्हें ऐसे गलत बात बोलकर कभी चोट नहीं पहुंचाते, उनकी भावनाओं को कभी ठेस नहीं पहुंचाते। चलो दोनों जाकर कपड़े बदल लो, फिर मैक्रोनी मिलेगी। दोनों ने मुस्कुराकर सर हिलाला और किचन से बाहर चली गईं। उनके जाते ही महिमा जी, जो उनके पीछे पीछे यहाँ चली आई थीं पर उनकी बातें सुनकर छुप गई थीं, दरवाजे की ओट से बाहर आ गईं। उन्होंने कशिश को देखा तो अधरों पर हल्की मुस्कान सजाए कटोरियाँ ट्रे में लगा रही थीं, फिर वहाँ से चली गईं। कशिश सबके लिए कटोरी में मैक्रोनी निकालकर बाहर आ गई। तब तक मैं शुभिका और शुभ्रा भी जल्दी जल्दी कपड़े बदलकर हाथ मुंह धोकर वहां आ गई और कशिश के आगे हाथ करके खड़ी हो गई। कशिश ने मुस्कुराकर दोनों को उनकी कटोरी थमा दी, फिर एक कटोरी महिमा जी को दी और दूसरी कौशल्या जी की तरफ बढ़ाई। पर जहां महिमा जी ने बिना कुछ कहे कटोरी थाम ली, वहीं कौशल्या जी ने इनकार कर दिया, हम नहीं खाते ये सब। खाकर देखिए ना बड़ी मम्मी, बहुत अच्छा लगता है। हाँ बड़ी मम्मी, भाभी ने बहुत टेस्टी मैक्रोनी बनाई है, खाकर देखिए। हाँ हाँ बड़ी मम्मी, बहुत स्वादिष्ट बनी है, खाकर देखिए, फिर एक नहीं 100 बार मांगेंगी। कशिश के साथ शुभ्रा और शुभिका ने भी दबाव बनाया। कौशल्या जी ने कुछ पल सोचने के बाद कटोरी ले ली और जैसे ही मैक्रोनी चखा, तीनों लड़कियों ने एक साथ ही सवाल किया, कैसा लगा बड़ी मम्मी। कौशल्या जी ने देखा तो तीनों लड़कियां चमकती आंखों से बड़े ही उत्सुकता से उन्हें ही देख रही थीं। कौशल्या जी ने बस सर हिला दिया और उनका जवाब पाकर तीनों लड़कियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। कशिश भी सबके साथ बैठकर मैक्रोनी का मजा लेने लगी और साथ ही उन दोनों से बात भी करने लगी। बड़ी मम्मी और चाची दोनों ही तीनों को देख रही थीं। शुभ्रा और शुभिका कैसे कशिश से इतनी जल्दी खुल मिल गए थे, कैसे उसको स्कूल की छोटी से छोटी बात बता रहे थे और कितने खुश लग रहे थे। आज उनकी बातें खत्म होने में ही नहीं आ रही थीं, जबकि पहले कभी वे इतनी बातें नहीं किया करती थीं। कुछ देर तीनों की बातें खामोशी से सुनने के बाद कौशल्या जी ने कशिश को पुकारा, बहू। जी बड़ी मम्मी। कशिश ने तुरंत पलटकर उन्हें देखा। कशिश उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी, वहीं कौशल्या जी ने गंभीर निगाहों से उसको देखते हुए सवाल किया, खाना ठीक ठाक बना लेती हो और बातों में तो अव्वल हो, इसके अलावा क्या आता है तुम्हें। घर के सब काम आते हैं। दिल्ली में तो नौकरी भी करती थी और उससे पहले ट्यूशन भी पढ़ाती थी। कशिश जैसे ही जवाब देकर चुप हुई, शुभ्रा झट से बोल पड़ी, भाभी आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती थी? सब क्यों, क्या हुआ? कशिश सवालिया निगाहों से उन्हें देखने लगी। अब की बार शुभिका ने फट से सवाल किया, मैथ्स भी? हाँ, दसवीं तक सब सब्जेक्ट पढ़ाती थी और ग्यारहवीं बारहवीं वालों को कॉमर्स के सब्जेक्ट पढ़ाती थी, पर तुम दोनों ये सवाल क्यों पूछ रही हो? कशिश का जवाब सुनकर शुभ्रा और शुभिका ने सर घुमाकर पहले एक दूसरे को देखा, फिर कटोरी रखी साइड में, एक साथ उसकी ओर मुड़ते हुए हाथ जोड़कर उम्मीद भरी निगाहों से उसको देखने लगी। भाभी आप हमें भी मैथ्स पढ़ा दीजिए ना, आपको पता है हमारे सब सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आते हैं, बस मैथ्स में डब्बा गुल है। कितना ही पढ़ लें अब सर के ऊपर से चला जाता है। नंबर इतने कमाते हैं कि मास्टर जी के साथ पापा भी हाथ साफ करते हैं। पहले भैया पढ़ा देते थे पर अब उनके पास वक्त नहीं होता। प्लीज आप हमें पढ़ा दीजिए, बस इतना पढ़ा दीजिए कि हम खुद से पास हो जाएं और हमें पापा की पिटाई ना खानी पड़े। प्लीज भाभी अपनी छोटी नंदो पर इतना उपकार कर दीजिए। दोनों की दोनों मासूम सी शक्ल बनाकर कशिश का मस्का लगाने में लगी थी। पहले तो कशिश अचानक उनके बदले अंदाज देखकर आंखें बड़ी बड़ी किए हैरान परेशान सी उन्हें देखती ही रह गई। फिर जब उसे उनकी बात और परेशानी समझ आई तो उसने दोनों के हाथों को पकड़कर नीचे कर दिया और मुस्कुराकर बोली, ठीक है पढ़ा दूंगी, वैसे भी मैं फ्री रहती हूँ, मुझे पढ़ाने में कोई परेशानी नहीं, मेरा तो टाइम पास हो जाएगा, तुम्हें जब पढ़ना हो मेरे पास आ जाना। अभी पढ़ाएंगी आप हमें? शुभ्रा के सवाल सुनकर कशिश ने सर हिला दिया और मुस्कुराकर बोली, ठीक है पर पहले मैक्रोनी खत्म करो, उसके बाद पढ़ाई होगी। दोनों लड़कियों ने मुस्कुराकर सर हिला दिया और खाने लगी। कुछ देर बाद कशिश दोनों को पढ़ाने बैठ गई। कुछ वक्त तक महिमा जी और कौशल्या जी भी वहीं बैठी रहीं, फिर आराम करने चली गई। दोपहर से शाम तक का वक्त कशिश का इसी में गया। जब दरवाजे पर दस्तक हुई तब जाकर तीनों को वक्त का एहसास हुआ। शुभ्रा और शुभिका अपनी कॉपी किताबें समेटकर कमरे में चली गईं। कशिश ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने रामविलास जी और सुजीत जी खड़े थे। कशिश उन्हें देखकर मुस्कुराकर अंदर चली आई। दोनों आदमी अंदर जाकर चौकी पर बैठ गए। इतने में कशिश किचन से दोनों के लिए पानी ले आई। रामविलास जी खामोशी से पानी पीने लगे। वहीं सुजीत जी ने आसपास निगाहें घुमाते हुए सवाल किया, भाभी और आपकी चाची बाहर गई हैं? उनका सवाल सुनकर कशिश ने तुरंत ही इनकार में सर हिला दिया,
नहीं चाचा जी, बड़ी मम्मी और चाची कमरे में है, आराम कर रही है। शुभिका और शुभ्रा कहाँ है? इतनी शांति कैसे है आज घर में? ये सवाल रामविलास जी का था, जिसे सुनकर कशिश मुस्कुराकर बोली, स्कूल से आने के बाद से पढ़ रही थी, अभी अभी कमरे में गई हैं। कशिश ने जैसे ही ये कहा, दोनों आदमियों की आंखें आश्चर्य से फैल गईं और उन्होंने चौंकते हुए एक दूसरे को देखा। दोनों ही स्तब्ध थे, जैसे कोई असंभव घटना के बारे में सुन लिया हो। सुजीत जी ने कशिश को देखा और हैरानी से सवाल किया, वो दोनों पढ़ रही थीं? कशिश दोनों के ऐसे रिएक्शन की वजह नहीं समझ सकी और असमंजस भरी निगाहों से उन्हें देखते हुए सहमति में सर हिला दिया, जी पढ़ रही थीं, अभी आपके आने पर कमरे में गई हैं, हम जरा देख कर आते हैं, कहीं उनकी तबीयत तो खराब नहीं? सुजीत जी को अब भी विश्वास नहीं हुआ और उठकर ऊपर चले गए। दरवाजे पर से उन्होंने झांक कर देखा तो सच में दोनों अब भी बैठकर पढ़ रही थीं। सुजीत जी बिना आहट किए वापस सीढ़ियों की तरफ चले आए। नीचे कशिश उन्हें जाते देखकर चौंक सी गई और रामविलास जी से खाली ग्लास लेते हुए हैरानी से बोली, बड़े पापा, उनके पढ़ने का सुनकर चाचा जी ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वे दोनों सारा दिन घर में उधम मचाती रहती हैं या फिर सहेलियों के साथ घूमने निकल जाती हैं पर पढ़ती नहीं हैं। उनका जवाब सुनकर कशिश चाय बनाने का कहकर किचन में चली गई। चाय बनाकर बाहर आई तो महिमा जी, कौशल्या जी भी वहां मौजूद थी। रामविलास जी और सुजीत जी कपड़े बदलकर आ गए थे। कशिश ने चारों को चाय दी, फिर जैसे ही जाने को पलटी सुजीत जी की आवाज़ में उसके कदम रोक दिए। शुक्रिया बहू। किस लिए चाचा जी? कशिश ने उनके तरफ घूमते हुए उनसे सवाल किया, जिसे सुनकर उन्होंने मुस्कुराकर आगे कहा, हमें मालूम चला आज आपने उन दोनों को पढ़ाया, वरना पढ़ती नहीं है वे। अब जाकर कशिश को पूरी बात समझ आई और उसके लबों पर प्यारी सी मुस्कान फैल गई। वो तो मेरा फर्ज था चाचा जी, वैसे भी खाली बैठे बैठे मैं बोर हो जाती हूँ, उन्हें पढ़ाने में मेरा वक्त भी कट गया। कशिश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और रात के खाने की तैयारी करने वहां से चली गई। सुजीत जी ने जाती हुई कशिश को देखा, फिर रामविलास जी को देखकर बोले, भाई साहब शादी चाहे जैसे हुई हो, परेशान लड़की अच्छी लाया है, छोटी भाभी जैसी स्वार्थी नहीं है वो। अभी से कोई राय बनाना ठीक नहीं सुजीत, वक्त बीतने दो, तब हम किसी निर्णय पर पहुंच पाएंगे, रामविलास जी ने गंभीरता से कहा और वहां से चले गए। कौशल्या जी भी उनके पीछे पीछे चली गई। सुजीत जी उनकी बात सुनकर कुछ मायूस हो गए। तभी महिमा जी की आवाज़ उनके कानों में पड़ी, ठीक कह रहे हैं आप, कशिश अच्छी लड़की है, बोलती ज्यादा है, बचपना बहुत है अभी, और बोलने से पहले सोचती नहीं, पर मन में कोई मैल नहीं उनके। सुजीत जी ने उनकी बात सुनी तो हैरानी से पलट कर उन्हें देखा। चाची जी ने किचन वाली पूरी बात उन्हें बता दी, उसके बाद की सारी बात बता दी। सुजीत जी ने ध्यान से उनकी पूरी बात सुनी और गंभीरता से बोले, हमें लगता है ईशान ने अपने लिए सही लड़की का चुनाव किया है, बहू भाभी जैसी नहीं है, हमें नहीं लगता कि कशिश कभी कुछ गलत करेंगी। महिमा जी ने उनकी बात पर सहमति में सर हिला दिया। आगे